بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محترم بھائی، جیسا کہ کل صبح میں عرض کیا گیا، اس وقت یہ جو اجتماع ہو رہا ہے دونوں کا، اس کا مقصد ہے داعی پیدا کرنا. جتنے لوگ آئے ہیں وہ داعی بننا ہے، نئے نئے لوگوں سے اتنا آرام سے بات کریں، اتنے قربت سے بات کریں کہ اور احباب کو اس کام میں شریک کر سکتے. تو آپ کہہ سکتے اس کو فکر ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کا ہونا ضروری ہے، امت کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کے دین سے اللہ سے محبت ہو، اور امت کے حالات پر دکھ ہو، انسان دکھ کا ہماری بات میں تاثر پیدا ہو. لیکن اسباب کے بدلے میں کچھ مواد ہم کو بات کرنے کا مل جائے تو سہولت ہوتی ہے. اس لیے کل آپ حضرات کو دعوتی بات سکھائی گئی. دعوتی بات جو تھی وہ کسی مطلب تھوڑی مختصر بات ہے سمجھے. اس لیے دعوتی بات میں ہم کلمے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. تو بھائی ہاں، آپ سے ملنے کے لیے آپ بھی ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، لیکن کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کی بنیاد پہ اس کو پہلے فکر دلا رہے ہیں کہ دینداری کی زندگی اختیار کرو، ایک چیز ہو. پھر یہ بتا رہے ہیں دعوت کی گفتگو میں کہ یہ جو دینداری کی زندگی ہم گزارنا چاہیں تو اس کے لیے ایک ماحول چاہیے دینی دوستوں کا. دینی دوستی کی کچھ فضائل بولتے اس کی اس طرف آیا جائے. آج جو ہم کو یاد کرنا ہے سر، یہ باقی ہے ابھی ہم لوگ زندگی کے لیے مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے اور بھی پوچھے گا اور لانگ ہے. دعوے دینے کی کاروائی تو کرنی چاہیے، جب تک بات روک دینا اور کچھ دینا ہے تو چائے نہیں پیے تو ہاتھ بھائی ہے چائے لا کے دے دیں گے، ٹھیک ہے، ایسا بھی پیے گا ساتھی کو تو اب جو آج جو ایک ہم کو بات کرنا ہے وہ ہے پیام حکومت. یہ تو پورا باضابطہ اس پہ یہ چھوٹی سی کتاب بنائی گئی. یہ جو ہے کسی آدمی کا ذہن بنانے کے لیے پوری بات اس کے اندر ہے. اس میں وہ بات ہے جو کہیں بھی بیانات کیے گئے، تجربہ ہمارا ہے ڈی او جگہ پر، یہ جس میں جو مواد ہے یہ بیان کیا گیا تو جتنی قومی بیٹھی ہوئی تھی وہ پورے لوگ تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے شامل ہو گئے. شاید 10% لوگ کسی بات بوڑھے بڑا ہونے کی بات خاموش ہو گئے. کئی جگہ بیان ہوا پورا مواد ہے تو پورے لوگوں کا دل کھل گیا کہ ہم دینی دوستی کے رشتے میں شامل ہوں گے. البتہ پھر کیا ہوا، کیونکہ ہمارے پاس ان کو لے کے چلنے والے ساتھی نہیں تھے، اس سے کئی جگہوں پر وہ لوگ کمزور ہو گئے. لیکن عام آدمی کو چلنے کے لیے تیار دینی دوستی میں رکھتی. ابھی ہم لوگوں کا دو ہزار اجتماع کرنے کا مقصد بھی ہے کہ لے کے چلنے والے تیار، اس لیے کہ یہ بات اتنی مؤثر ہے جس کو بولیے لگنے کے لیے تیار ہے، مگر لگنے کے بعد لے کے کون چلے گا؟ لے کے چلنے کے لیے فکر ہونا، پورے کام کا تجربہ ہونا، اور اخلاص ہونا، بات کرنے کا ایک جذبہ ہونا، جواب دینے والا آدمی ہونا، تب جا کے اس چیز میں آئے. تو یہ بات ہے، یہ سب کے پاس یہ کتاب ہے، یہ اصل پوری بات اس کے اندر ہے. لیکن اتنی موٹی چونکہ یاد نہیں کر سکتے، زبانی یاد نہیں کر سکتے، ایسے دو چار مرتبہ مطالعہ کرنے کے بعد گفتگو کے وقت پوری بات آتی رہے گی. رٹ کے بولنا الگ ہے، بغیر رٹے کے بار بار کتاب کا مطالعہ کریں گے تو پوری بات بولنا آسان ہو جائے. لیکن اس کے آخر میں اس کا خلاصہ بنا دیا ہے، چند صفحوں کے اندر پوری کتاب کی بات کو ایک جگہ کر دیا گیا ہے، وہ خلاصہ اس کے اندر بھی لیا ہے. ابھی جو ہے خلاصہ جو سمری ہے اس کو میں تھوڑا سمجھا دوں گا، اس کے بعد آپ کو یاد کر کے سنانا ہے. एक नए आदमी का जहन बनाना है तो उससे हम क्या बात करेंगे, वो पॉइंट। तो पहले आप लोगों को नए नए लोगों का जहन बनाने का जज्बा है तो इसमें दिलचस्पी रहेगी इंशाल्लाह। आप लोग नए नए लोगों का जहन बनाएंगे क्या? अभी हमारे नौजवान अभी ये कमरे में आके मिले हो सकता है आपका खालिद समझा जिनके जहन में बैठे बैठे ख्याल आया वो सब्जियों के नाम पे जुड़ रहे तो वहाँ पर अलग अलग ख्याल के लोग अलग अलग ख्याल के लोग तो नमाज नहीं पढ़ रहे अक्सर लोग दस की सच्चे नमाज पढ़ रहे मगर तबियत की बुनियाद से बुरा है तो ट्यूडल पहले से काबू है उसका इनके जहन में आया यही दोस्ती का क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्त को मिलते दोस्ती करते वो बोला बिल्कुल करेंगे हम दुनिया की हर चीज क्लास से दोस्ती करते वो लोग दिन के नाम में दोस्ती करेंगे तो लोग पूरा ही वक्त में तो दस आदमी से मिले दस आदमी भी तैयार है हम मिलेंगे और हालांकि अभी अभी दीन दोस्ती की किताब नहीं पढ़े हुए हैं तो खाली तीन रुपा थोड़ा सा कसम था दीन दोस्ती का बोलते दस आदमी तैयार होते तो आप लोग भी अगर नए नए लोगों को लाने वाले हैं बोले तो ये आज का मवाद याद करने में आपको दिलचस्पी होगी नहीं लाने का इरादा है बोले तो ये भूल न रहा तो आप लोग नए नए लोगों को जोड़ेंगे इसमें इंशाल्लाह ना जरूर जोड़ेंगे ना तो तवज्जो से याद करेंगे ना आप देश को भूल लेकर नए आने के बाद ये सवा नंबर 14 पे है देखिए खोल के आप बैठ सकते हैं सवा नंबर 14 उर्दू में रोमन में क्या मालूम थी सफा नंबर खयाम वकूत आप वही निकाल के क्या खयाम वकूत सफा नंबर 11 रोमन में सफा नंबर 11 और उर्दू में जो है सफा नंबर 14 पहले क्या बात करना है किसी का जहन हमको बनाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमान उम्मत इन दिनों गैर मामूली खतरात में गिरी हुई है पहले आपने ये बोला देखिए भाई आप भी जो है हालात से वाकिफ हैं
उसमें क्या क्या परेशानियां गुजर रही है और किस मुल्क में आरएसएस
और फिरका परस्तों की कैसी कैसी सरगर्मियां चल रही है उसका एक हल्का सा नक्शा है उस पढ़ लेना है लोगों के सामने ये बताना है कि देखिए इस वक्त हमारे हालात नॉर्मल हालात नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो दुश्मनी फैलाने वाले वो 100 साल से काम कर रहे थे 2024 हो गया तो उनका 100 साल हो जाते 100 साल से लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ की आबादी में करोड़ों लोगों का दिमाग लोग ऐसा बना दिए है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल देना मुसलमानों को दबा देना है उनके दीन को उनके तहजीब को सब छीन लेना बीजेपी को जो वोट मिलेगा ना वो 16 करोड़ से ज्यादा है उनकी बोला 16 करोड़ लोग वो दिमाग कह रहे इतने लोगों के दिमाग में लोग क्या बना दिए इस्लाम की दुश्मनी का मिजाज बना है मुसलमानों को खत्म करने का मिजाज बना और न सिर्फ जहन बना है बल्कि हथियार चलाने की बहुत बड़े पैमाने पे तरबियत दे चुके हैं बच्चे बच्चों को शिशु मंदिर के नाम से लाखों हजारों स्कूल है जिसमें लाखों बच्चों को लोग हथियार चलाने की मश्क करा चुके हैं वो मेरे बचपन से बार बार कहीं नहीं मिलता न्यूज सुन देखा हूँ हमारा फोटो खींचे मुसलमानों को खत्म करना और फिर इतने शोबे हैं सब लोग अपनी तंजीम कायम कर दी किसानों में उनकी तंजीम है ताजिरों में उनकी तंजीम है मजदूरों में उनकी तंजीम है टीचरों में उनकी तंजीम है वकीलों में उनकी तंजीम है और से रिटायर्ड होने के लोग निकले हैं उन सब में उनकी तंजीम है हर शोबे में ऐसी तंजीम बना दिए हैं जो यही जहन का जहन मिलता है और पूरे जितने मुल्क में काम काज करता ऑफिसर से करता जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जो पूरे मुल्क की मिशनरी भी चलाते हैं और इंद्रनाम शोभे में वो लोग 6 लाख अपने लोगों को मिला दिए, 1-2 ने 6 लाख लोगों को मिला दिए ऑफिस वगैरह में। तो सबके जवाब में यह है कि मुसलमानों को घेरना है, दबाना है, सूदों के लेवल पे ले जाना है। अब फिर वो लोग अब इतनी हिम्मत आ गई कि वो आप बोल रहे हैं कि आपकी हमारी हुकूमत आएगी तो फिर आइंदा फिर कोई हुकूमत आएगी नहीं, 50 साल अभी रहेंगे। और अब ये बोल रहे हैं कि हम फला फला इतने आसे में दस्तूर बदल देंगे, फालस में जो जो बोलते हैं कि हम जो है सबको खत्म कर देंगे, भगा देंगे, तो बोलते हैं। ये हालात हमारे मामूल के हालात नहीं है, हमारे अपना पूरा दुश्मनी का माहौल बन चुका है। ऐसे माहौल में अगर खाली मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर ये सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा। अपने रोज की मसूलियात में रूटीन में फंसे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। फसादात की लहर चलेगी, तूफान आएगा तो न मुलाजमत बचेगी तुम्हारी, न कारोबार बचेगा, न कुछ सब करेंगे। इस वास्ते ऐसे हालात में कुछ करना है हमको, ये पहले तस्वीर का बोला कि हमको डरना नहीं है, मोमिन डरता नहीं। इस उम्मत को कोई भी खत्म नहीं कर सकता दुनिया में, तो वजूद को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हमको कुछ करना है। अगर कुछ ये होता है तो खुद से मसले हल नहीं होते, हमको कुछ करना है। तो पहले हालात बोल के उसको चौकन्ना करना आदमी को, तो मस्त से खाने कमाने में उसको हिलाना पड़े। तो हालात ऐसे जब सीरियस हो जाता है वो, अब उसको बोलना है कि भाई ऐसे ही हालात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी आए थे। तो अपना पहला इसमें पॉइंट क्या है, उम्मत इन दिनों गैर मामूली खतरात में घिरी हुई है। तो खतरात की बड़ी तफसील की ना तामी उम्मत किताब में आपको मिल जाएगा, वैसे भी आप लोगों को मवाद मालूम। अब ऐसे हालात, दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे हालात का मुकाबला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुत्तहिद बना के किया। एक किस्म के माने मुत्तहिद बना के किया, आराम से पूरी फिक्र को समझ लो आप लोग। आपको बोलने आता नहीं आता खुद तो बहुत आएगा, आहिस्ता आहिस्ता फिक्र क्या देना है आप समझो। आपके अंदर फिक्र आ जाएगी ना तो आप अपने स्टाइल से बोलेंगे, पहले क्या बोल के उम्मत को जगाना है उसको। तो उनको ये बोलना है कि देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दिनों में मदीने में तशरीफ फरमा थे, आपके साथ 10,000 मदीने के मुसलमान थे और बाकी हालात बहुत खतरनाक थे मदीने में, इसलिए पूरा अरबस्तान दुश्मन था। पूरे अरब के सरदार थे तो पूरे दुश्मन होने की वजह से अरब में जितने कबीले थे वो सब मदीने के दुश्मन थे। सबकी एक फिक्र थी कि मदीने को खत्म कर देंगे, इसलिए हुजूर को बार बार सहाबा की छोटी छोटे फौजी दस्ते बना के पूरे मुल्क में हुजूर फैलाते रहते थे। तो लोग सहाबा के दस्ते घूम के कहीं कोई हमला कर रहा तो नहीं उसकी खबर लेना, और कोई कर रहा तो वहीं निमटा देना। चौकन्ना रहने के वास्ते हथियारों की तैयारी के साथ हुजूर हर महीना औसतन 5 फौजी दस्ते भेजते थे। तो पूरे अरब में घूम के चौकन्ना रहते थे, मालूम नहीं कब किधर से हमला हो जाए। पहले से अपने को तैयार जंग की हालत में, अगर मां यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के कंधे जमा के दूसरे अमीर रहे, उन्होंने पूरा नाश्ता किया। 600 मरतबा हुजूर ने फौज भेजी है मदीने, क्यों, इसलिए घर पर जंगी हालात, तो पूरा अरबस्तान दुश्मन था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, और फिर क्या हुआ, जब सुबह होने भी हुई तो हुजूर ने क्या किया, अपने नुमाइंदों को मुख्तलिफ दरबारों में बड़े बड़े अकरार जो आयशा थे सबके पास इस्लाम की दावत थी कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ, तो इस्लाम कबूल करो तो बच जाओगे वरना अल्लाह का अज़ाब तुमको पकड़ेगा। क्लियर दावत थी। अब वो दावत उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दो ताकतें थी, एक रूम ने ईरान। तो जब ईरान के बाहर के पास जरूर का खत पहुंचा तो गुस्से से लाल किला और खाड़ फेंक कर मेरा गुलाम होगी मुझे इस तरह बात करता, और दो अपने आदमियों को भेजा कि जाओ उसको गिरफ्तार कर देगा। वो समझा कि दो आदमियों से काम कर जाए, उसका मामूली समझता था मदीने, लेकिन दो आदमियों को भेजा जाओ पकड़ कर आप पुणे नहीं कर देंगे। तो ये तो हुजूर ने दावत दी ना, उससे क्या हो गया, रूह को ईरान से जंग छिड़ गई दुश्मन की दुश्मन हो गए। तो उस वक्त दुनिया के जो दो सुपर पावर थे वो भी दुश्मन हो गए मदीने के। अब रूह के बारे में तो इतना ही आ गई कि 2 लाख का लश्कर में जो लोग आ गए हैं सरहद पे पहुंच रहे हैं, हुजूर को फौरन जो है सहाबा को बयान करके हुजूर ने सरहद पे पहुंचे हुए, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लड़ाई नहीं। लेकिन हालात पूरी दुनिया के यानी बड़े बड़े लोग ताकत भी दुश्मन होगी दुश्मन। अब मदीने वाले जो चंद हजार थे पूरी दुनिया दुश्मन हो गई, तो लोग ये क्यों नहीं किए हुजूर तुझे बोले कि भाई आपकी वजह से सारे लोग दुश्मन हो रहे हैं, कभी भी हम लोग खत्म हो जाते हैं, इसलिए आप अपना काम बंद कीजिए या मक्के को वापस ले आइए, ऐसा नहीं बोले उनकी जगह, बल्कि पूरी तरह डट गए हुजूर की ताई में। और फिर 10 साल में ऐसे हालात पैदा हो गए कि पूरे अरब के दुश्मनों के भी सहाबा छा गए और वो जो उस वक्त जो दो सुपर पावर थे उनको भी सहाबा ने पता कर दिया। हुजूर के 10 साल के बाद ऐसे हालात हो गए, तो ये उन्होंने कैसे किया, इतने खतरनाक हालात में ये जो छोटी सी तादाद के लोग कहां पे क्यों गए, ये कि थोड़े से लोग वो डरे भी होंगे, उन्होंने हाथ क्यों नहीं उठाया, उन्होंने हुजूर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा। तो उस पर हम गौर करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि हुजूर ने असल में जो छोटी सी जो ग्रुप था छोटी तादाद की उनको मुतहद कर लिया, मुतहद इतना मजबूती से मुतहद किया था एक जिस्म की तरह से, उस इत्तेहाद की वजह से उनकी हिम्मत बुलंद थी, सारी दुनिया मुखालिफ होने के बावजूद भी वो लोग समझते थे कि हमको भी खत्म नहीं कर सकता, क्यों इत्तेहाद की वजह से ऐसा मजबूत इत्तेहाद हुजूर ने कायम किया। हुजूर उसका नाम कैसा था, इत्तेहाद कैसा होना, बोले एक जिस्म की तरह हो, पूरे मुसलमान मिलके कैसे हो जाए, 10,000 बाड़ी नहीं तो मिल एक ही बाड़ी, एक जिस्म की तरह एक हो जाओ पूरे मुसलमान। यह कथा लहु अफ कथा लहु साहिल जसद साहिल हुमा, कि अगर जिस्म इतना मुतहद रहता है कि जिस्म के किसी एक अंग को काटा चुट गया तकलीफ पहुंच गई, तो जब बुखार आता है तो पूरे जिस्म को बुखार आता है, और जब जागता है तो पूरा जिस्म जागता, ऐसा नहीं होता कि पांव कट गया है, पांव में थोड़ा हो गया है तो पांव तो रात भर तड़प रहा नाच रहा और बाकी बदन सो रहा, ऐसा नहीं होता, पूरा बदन उसका साथ देता है, बुखार भी पूरा बदन को आता है और जागने का काम भी पूरा बदन। गुरु ने यह मिसाल दी, इस तरह से तुम लोग जॉइंट हो जाओ, एकदम मुतहद हो जाओ, एक की तकलीफ सबकी तकलीफ, एक के पीछे सबको। ये जो हुजूर ने इतिहास बनाया इसकी वजह से वो लोग पूरी दुनिया पर आने वाले। अब सवाल होता है कि वो इतिहास कैसा बनाया, तो उसके कुछ किस पे हम तो बोल रहे हैं लोगों के सामने, इतने मरहले थे इतने कदम थे जिससे हुजूर ने इतिहास बनाया। तो पहला काम अल्लाह के नबी ने किया, पूरी फिक्र को आप समझ लीजिए, बात करना आपको आ जाएगा, हुजूर ने सबसे पहले किया पूरे मुसलमानों के दिल में कलमे की अजमत दिखाई। देखो सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है कलमे की वजह से, ईमान की वजह से, मगर याद रखो ईमान बहुत कीमती है, सारी दुनिया में तुमको टुकड़े टुकड़े कर दे तो कट जाना पसंद करो मगर कलमा मत छोड़, कलमे की अजमत सिखाई, ईमान की अजमत सिखाई, कि ईमान के लिए 1000 मरतबा मरना भी हल्का सौदा है, महंगा सौदा नहीं, ईमान बहुत ताकत है। तो कलमे की अजमत हुजूर ने सिखाई, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो तुमको जो दौलत मिल रही है ना इससे हमेशा की जहन्नम से तुम बच जाओ, जिसने भी सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा अब उसके लिए जन्नत पक्की है। और फरमाया ये कलमा इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि अगर पूरी कायनात सातों जमीन सातों आसमान और जमीन को एक हल्का बना दिया जाए, उस हल्के को तोड़ के कलमा निकल जाए, पूरी कायनात को तोड़ने की ताकत इस कलमे में। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग हदीस सुनाएंगे कि बड़ा सा आएगा, तो हुजूर ने क्या किया, ईमान की अजमत दिलों में बिठाई और फिर मोमिन के अंदर ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت تھی. حضور نے کہا فرمایا, حضور نے فرمایا کعبۃ اللہ سے بڑھ کے احترام کے قابل کرنے والا ہے. کعبہ بہت احترام والا تو ہے, لیکن ایک مومن کعبے سے زیادہ احترام کے قابل ہے. مومن کی عزت کعبے کی عزت سے بڑھ کے, کسی کی غیبت مت کرو, کسی کا دل توڑنے والی بات مت کرو ایمان والے کی. اس لیے کہ کعبہ ڈھانا چھوٹا جرم ہے, کسی مومن کا دل توڑنا اس سے بڑا جرم. اس لیے مومن کی عزت اس سے بڑھ گئی. اردو نے اتحاد پیدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس وقت حالات بہت خطرناک ہیں, نارمل نہیں ہے, اس لیے ہم کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اس کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ایسے ہی مشکل حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے تھے, لیکن صحابہ ڈرے نہیں بلکہ جم گئے. کیوں؟ اتحاد حضور قائم کیا, ایسا اتحاد کا ذریعہ جسم کا اتحاد ہوتا. اس میں تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ اتحاد پیدا کر کے کلمے کی عظمت مومن کی عظمت سب کے دلوں میں ہے. اس کلمے کے واسطے ساری دنیا کے ہم کاٹ تو کٹ جائیں گے, وہ کلمہ نہیں چھوڑیں گے. اور ایک مومن کے اوپر اپنی جان دیں گے, وہ مومن کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مومن کی عظمت. اس لیے دیکھو مسلمانوں میں اتحاد کب قائم ہوگا؟ جب سب مسلمان ایک دوسرے کو دل سے برا سمجھ رہے ہیں, یہ بولا کہ بڑا لٹتا ہے, رقم ہے, سب ایک دوسرے کے بارے میں اللہ تو انہیں گمراہ انہیں گمراہ انہیں گمراہ ان کو بولو, اور فلاں جو ہے غلط فلاں غلط, تو دلوں میں آپس میں عزت نہیں, تو اتحاد قائم ہو سکتا ہے. بیوی کی بولی شوہر کو دنیا کا سب سے کمینہ انسان میرا شوہر ہے اسے سمجھ لیتی, اور شوہر کا سمجھنا میری بیوی کا ہے بھوتنی ہے چڑے ہے نہ میرے جان کو لگ گئی. اب ایسے گھر میں اتحاد ہوتا تو جب پہلے عزت ہے نا, بعد میں محبت آتی. عزت بھی نہیں ہے تو محبت نہ رہتی. آج دکھاوے کا ملنا رہتا اگر دل میں عزت نہ. تو مسلمانوں میں پہلے کلمے کی بنیاد پہ عزت سکھا رہے ہو, اور تم جو ہے شراب بھی رہے دو, تبا بھی رہے دو, کیا بھی رہے دو, کلمہ ہے کیا؟ کلمہ ہے تو محبت کرو, کلمہ ہے تو عزت کرو. تو کتنی عزت ہے؟ کعبے سے بڑھ کے عزت نہیں سمجھا. اس کے بعد حضور کیا کیا؟ آپ کے لوگوں کے دنوں میں عزت آ گئی. اب کیا کریں؟ حضور اجتماعی زندگی سکھائے, اکیلا تیرا ہر اپنی منزل سے دیرا جو دن آیا کر رہا, ایسا نہیں کہ جہاں بھی کوئی مسلمان ہے امیر کے تحت رہے. جبکہ حضور کے پاس اگر لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئے, دس آدمی آ گئے, تو دس میں فوراً ایک کو امیر بنا دیتے. کبھی کسی علاقے سے آ گئے پچاس آدمی آ گئے, فوراً ایک کو امیر بنا دیتے. کبھی پینتیس آ گئے, یعنی کسی کو بھی اپنے اپنی جگہ پہ جا کے عبادت کرو نماز پڑھو ایسا نہیں بولتے, تو پہلے امیر بناؤ. آرگنائزیشن جتنی بھی کروڑوں کی تعداد ہے اگر آرگنائز نہیں ہے تو کوئی بھی کام کے لیے بھیڑ ہے وہ, اور اگر سو آدمی اگر آرگنائز ہے ان کا ایک بڑا ہے جڑے ہوئے ہیں تو ایک طاقت. جیسے ہمارا بدن ہے آتما وغیرہ سب کا امین دماغ ہے, سب تو لے کے چل رہا تو جسم ایک طاقت بنتا. گلا کاٹ کے رکھ دو باقی کتنے کی ہزاروں پیر ہزاروں ہاتھ رکھ دو, ہاتھ پیر کو کام دیا جائے ان کے ان سے دماغ نہیں. ایک دماغ سے جب کنیکٹ رہے گا پورا بدن تو بدن میں طاقت ہے, اور دماغ سے اگر الگ کر دو تو کوئی طاقت نہیں. تو بزرگ کیا کرتے تھے؟ آرگنائز کرتے تھے. جہاں مسلمان ہیں فوراً بولتے تھے بھوک ہی رہو. یہاں تک کہ تین آدمی بھی اگر کہیں مسلمان جمع ہے تو خالی اکیلے اکیلے نہیں رہنا, ایک امیر بنا لینا. اس کی تفصیل ہے. مسلمان بھائی بھائی حکومت محبت کا رشتہ کریں, صرف ظاہر نہیں, ضرورت کے طور پہ امیر ہے دوسرے معمور ہے, یہ تو ظاہر ہی ہے, یہ اندرونی محبت لے کے ہم سب بھائی بھائی. اس کے تفصیل سے آداب احادیث میں سکھایا جائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو کیا کیا حقوق ہے؟ ایک مسلمان کو سلام کرنا ہے, سیر کے تو جو ہے اس کے رحمت اللہ بولنا ہے, بیمار ہوا تو عیادت کو جانا ہے, انتقال ہو گیا تو جنازے میں شریک ہونا ہے, ہر چیز کا ثواب پتا ہے, پریشان ہو گیا تو تسلی دینا ہے, تو ظلم کر رہا ہے تو جا کے مقابلہ کرنا ہے, پورے حقوق غیبت نہیں کرنا ہے مسلمان کی. مسلمان کے کوئی مسلمان کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اپن جا کے اس میں دخل نہیں دینا. پورے تفصیل سے آداب بتائے کہ حکومت کا مطلب کیا, بھائی بھائی کا مطلب کیا, کیا حق ہے ہندو. تو کتنے اسٹیپ ہو گئے اب تک؟ پہلے بولنا ہے کہ حالات خراب نارمل ہے, بے فکر نہیں رہنا, آپ کو کچھ کرنا. دوسرا یہ بولنا ہے کہ ایسے خراب حالات بزرگ بھائی کو ڈرے نہیں, بلکہ امت کو متحد کر کے مقابلہ کرے. تیسرا یہ بولنا ہے کہ متحد پیدا کیے, عظمت کلمے کی عظمت, مومن کی عظمت دل میں پیدا کیے. اور چوتھا یہ بولنا ہے کہ آرگنائزیشن اجتماعی پیدا کرے سکتے ہیں. اور پانچواں یہ بولنا ہے کہ اجتماعی سے بھی آگے بڑھ کے حکومت پیدا کرے, بھائی بھائی کا جذبہ اس کے اندر پیدا کیے. اس کے بعد چھٹواں کیا ہے, حکومت سے بھی آگے کا اسٹیپ ہے. بھائی بھائی میں کیا ہے, بھائی ایک روٹی ہے تو آدھی کھا, میں آدھی کھاؤں گی, تو بھائی بھائی میں چل جائے. حضور اس سے آگے کیا سکھائے صحابہ کو, کہ ایک دوسرے پر اپنے اوپر دوسرے کو تکلیف نہ سکھائے. اگر ایک روٹی ہے تو میں نہیں کھاؤں گا, پوری سامنے والے بھائی کو کھلاؤں گا, میں بھوکا رہ جاؤں گا, یہ سکھائے. آدھا آدھا نہیں, تو بھی جی میں بھی نہیں, تو جینا میں مر جاتا ہوں, تو جینا میں تکلیف اٹھاؤں گا, تو راہ سے رہ, یہ سکھائے. اور ہم کو ساتھ سکھائے, بھائی بھائی کی نظر پر ایک دوسرے کا اتنا ہم نہیں رہتا, لیکن حضور کیا کہ ایک دوسرے کا ہم آنا سکھائے, خوشی میں کمی میں شریک ہونا سکھائے, بلکہ اپنے اوپر ترتیب دینا سکھائے. یہ جو ہے چھ پوائنٹ ہے. اب آپ کیا بولنا ہے, آپ نے ساتھ پڑھ کے بولنا ہے کہ یہ جو مل جل کے رہنے کا جو حکم ہے, بھائی بھائی کی طرح رہنے کا جو حکم ہے, یہ خالی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے واسطے نہیں ہے. کوئی دشمن نہیں بھی ہے تو مل جل کے رہنے کا حکم ہے. بھائی بھائی کی طرح رہنے کا جو حکم ہے وہ صرف حالات کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ مومن کی نیترل صفات میں ہے, یہ ایمان کا تقاضا. اور جنت پہ جانے کے واسطے یہ صفات ضروری ہے. اگر کوئی دشمن ہمارے نہیں بھی ہے, ہم لوگ پرسکون بھی ہے, تو بھی ہم کو مل جل کے رہنے کا حکم ہے. یہ سات پوائنٹ ہے. اب اس میں کیا کیا گیا, ایک ایک کی پھر اس میں تفصیل بتائی گئی. پہلے تو خلاصہ بتا دیا گیا موجودہ حالات کا علاج کیا ہے, حکومت کو متحد کرنا, متحد کرنے کے اسٹیپ سے. اس کے بعد ایمان کی عظمت کے اندر ابو یعلا کی روایت ہے, کلمہ طیبہ پر جنت کا وعدہ ہے. اس روایت کو آپ چھوڑ دیجیے, ابھی سنانا ہے آپ کو. دوسری روایت کے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کلمہ طیبہ اتنا طاقتور ہے کہ سارے کائنات کے گھیرے کو توڑ کر اللہ تک پہنچا. یہ ایک سنانا ہے. اس کے بعد جو ہے, اس کے بعد کی روایت بھی سنانا ہے, کلمہ بڑی عزت والا ہے, سچے دل سے کہیں پڑے گا تو جنت میں جائے گا. کلمے کی اور مومن کی عظمت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ لوگوں کو سنانا ہے. مثال نمبر 3 میں کعبہ, حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا, اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے, تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے, تو کتنا قابل احترام ہے, لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے, بڑھ ہے. یہ حدیث آپ کو سنانا ہے. عظمت ایمان میں, عظمت مومن میں, ایک تو کلمے کی عظمت میں دو حدیثیں سنانا ہے. ایک گھیرا توڑ کے نکلنے والا ہے یہ کلمہ, دوسرا جو بھی سچے دل سے پڑے گا جنت میں جائے گا. پھر مومن کی عظمت میں سکھانا ہے کہ کعبے سے زیادہ مومن جائے گا. اب اجتماعیت کے حکم میں کچھ پوائنٹس ہیں جو آرگنائزیشن کے بجائے اس میں کیا ہے. آپ پہلا پوائنٹ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور عبادات سکھا کر ایک ایک مومن کو اکیلا نہیں چھوڑا, ایک ایک جوڑ کر مختلف ایمان امت بنائی. اس زمانے میں کیا کر رہے ہو, تو جتنے بھی دین کے کارن کام کرنے والے ہیں لوگوں کو نماز سکھا دے, تقوا سکھا دے, اچھا سنت کا لباس سکھا دے, اور اکیلا اکیلا چھوڑ دے. اب ایک مہینے کے اندر جو ہے ماشاء اللہ 50 آدمی گیتا رہتے, وہ گھر میں ایک, وہ گھر میں ایک, وہ گھر میں ایک, وہ گھر میں ایک نیک متقی شریف سو رہتے, مگر وہ 50 کا آپس میں کوئی لنک نہیں رہتا, نہیں اپنے جگہ نہیں جاتے, ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں. ایک مسجد میں نماز بھی پڑھے تو پڑھ کے نکل جاتے, کوئی دوستی حضور ایسا نہیں تھی. خالی نیک لوگوں کو بنا کہ وہاں اتنے گیا اتنے گیا اتنا ایسا نہیں چھوڑ دیا. حضور کیا کیے, ایک نیک بنتے اس کو دوسرے نیک سے جوڑ, پھر تیسرا آدمی نیک بنتے اس کو یہ دونوں سے جوڑ کے تین کو جوڑ دیا. ایک ایک تین کو اس طرح جوڑ لو کہ عمارت بنائی جاتی ہے. ہمارے نبی ایک ایک مسلمان کو جوڑ کے امت بنا, अलग अलग विग्रह ग्रहण की तरह समझे। ये पहला दूसरा परिचय आय क्या है आय सूर्य आदि ग्राम क्या है वात सिमु बिहब्दिल्लाह जमीआ वला तफरकु। तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और अलग अलग ना रहो। मशहूर आयत है तो दूसरे इसमें हमको ये आयत याद रखना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है कुरान मजीद में अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर पकड़ो बोलते हैं अकेले अकेले पकड़ो बोलते नहीं दीन को अकेले अकेले पकड़ना नहीं सब मिलकर पकड़ना है बिहब्लिल्लाह जमीआ है जमीआ सब मिलकर पकड़ो अलग अलग पकड़ेंगे तो ये रस्सी हाथ आने वाली नहीं सब मिलना जरूरी ये आयत याद करना है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ किसी एक चीज में नहीं इस्लाम के जितने भी अहकाम है सब में सब मिलकर करने का सिस्टम है अलग अलग रहने का सिस्टम जैसे नमाज है कोई बोला मैं घर में पढ़ लेता हूँ तो इजाजत है नहीं आओ मुसलमानों के साथ मस्जिद में आके पढ़ो तो मस्जिद में भी आ जाऊंगा मैं मगर मैं अलग अलग पढ़ लेता हूँ तो इजाजत नहीं है नमाज बनाओ बोलते जमात में मैं बनाऊंगा मगर धूल धूप ठहरेंगे तो नहीं कंधे से कंधे मिला के करो बिल्कुल जुड़ जाओगे नीचे के ऊपर तक जुड़ जाओ एकदम जुड़ जुड़ के पढ़ना है और नमाज शुरू करने के बाद भी अब आराम से मैं जो है जितना कुरान पढ़ना है पढ़ के मैं रुकू करूंगा इमाम साहब पहले ले दो जान दो ऐसा नहीं इमाम के साथ झुकना है इमाम के साथ उठना है एकदम विशाल डिसिप्लिन है ऐसे ही ज़कात का हुक्म है तो ज़कात में भी खूब करो में कमियां आई तो तुरंत वाला पता ये सबसे ली जाएगी उनके एक जगह जमा होती थी। आज जिस तरह से हर आदमी अपनी ज़कात अपन दे ले रहा है हुजूर के जमाने में नहीं था बाबा के जमाने में ऐसा नहीं था सबकी जकात एक जगह जमा होती थी इसमें एक चीज एक जगह से वो हुकूमत उसका इंतजाम करती थी। ऐसे ही रोजा है उसमें भी इस्लामी का इस्तेमाल थे सब मिलकर रमजान में रखो बोल के अपने अपने मर्जी से कोई जमाल में कोई बंदे से रख दिया और एक साथ सबका रोजा सही एक साथ शुरू होती और रोजे का खात्मा एक साथ होता ईद आए तो सब एक साथ छोड़ दो हज के लिए जाएंगे तो वहां भी अमीर हज रहता हज को भी ऐसा नहीं रखते साल में कभी भी कर लो बोल नहीं हज में एक दिन में एक ही टाइम पे अरफा के मैदान में सब जमा होना अरफा के मैदान में जमा नहीं हुए वो महसूस वक्त में सब तो जो नहीं गया उसका हज नहीं होना एक वक्त पे जमा होना। ऐसे घर में भी बोले शोहर को बड़ा बना के चलो तो अपना भाई मैं नहीं करना घर वाले घर का एक बड़ा हुकूमत में भी ऐसे एक खलीफे के ऊपर इतिहाद होगा अपना खलीफा है राय मशवरे मारे अगर कोई आदमी उसकी मुखालफत कर रहा है तो अगर जो कितना बड़ा इंसान क्यों हो कितना बड़ा वली हो उसका गला काट देगा उसको खलीफा तय हो जाने के बाद मशवरा हो जाने के बाद कोई अगर सरकशी कर रहा है नहीं मान रहा है तो उसको काट देगा। तो इंफरादी जिंदगी में इबादत में हर जगह क्या है इस्लाम में इस्तेमाई है सब मिल के करो सब मिल के करो एक ग्रुप होकर करो। ये तीसरा पॉइंट है नमाज रोजा जकात हज माशरत कौमी हुकूमत की दायरे में इज्तिमाई नदी का अहकाम है। नंबर चार आप हर मजमू अफराद पर एक सरबरा अलीफ नकीब या अमीर मुतय फरमा देते अर्ज किया गया कि जब भी कुछ लोग आते थे कलमा पढ़ने के वास्ते फौरन उसमें एक को अमीर बना देते तो जिम्मेदार बनाते थे तीन नाम होते थे गुरु के पास या तो किसी को अमीर बोलते थे या किसी को अरीफ बोलते थे या किसी को नकीब बोलते थे अलग अलग लेवल है आदमी तो नकीब को बनाते थे या तो अरीफ बनाते थे या अमीर बनाते थे। एक को बड़ा चौथा पॉइंट है पांचवा पॉइंट क्या है पांचवें पॉइंट में तीन हदीस है पांच छह सात ये हदीस है आठ क्या है हदीस नसई की है जमात को मजबूती से थामो भेड़िया दूर निकल जाने वाली बकरी को खा जाता है अलैकुम बिल जमा कई मस्जिद याकुल खासियत जो की मंदिर से बाहर निकल जाती है बकरी पूरे बकरी में से निकल के अकेली हो जाती है, वैसी अकेली बकरी को भेड़िया पकड़ता है। जिससे आए मुसलमानों तुम लोग अलग अलग मत जियो बल्कि जमात के साथ जुड़कर जमात को मजबूती से खाओ। भेड़िया दूर निकल जाने वाली बकरी को खा जाता है। उस वाले नदी से जमात बनकर तुम पर कहना तुम पर लाजिम है। अलैकुम बिल जमात एक पद के साथ शैतान लगा रहता है। अगर कोई अकेला है तो शैतान उसके भटकाता रहता है। तीसरी हदीस क्या है, अगर तीन मुसाफिर हो तो भी एक को अमीर बना लेता। तीन हदीस है ये इसके भाई के बारे में। उसका चौथा जो है वो सईद बिन मुसैयिब का मुल्ला है। सईद बिन मुसैयिब जो सहाबा के शागिर्द में ताबी हुए हैं, बहुत बड़ा मकाम था। वो क्या कहते हैं, शैतान तीन अपराधों को परेशान नहीं करता। अकेला अकेला कोई जीरा तो उसको भटकाता है, दो भी है तो भटकाता है, मगर तीन नीचे होते ही होते तो नहीं भटकता। इज्तिमाइयत के अंदर कितने पॉइंट हुए गया, आठ पॉइंट है। मगर आठ पॉइंट में जो है ये पांच छह सात एक ही लाइन की हदीस है। तो इज्तिमाइयत की कितनी बातें मैं दोहराता हूँ, मेरे साथ आप लोग दोहराए। इज्तिमाइयत में पहला पॉइंट क्या है कि हुजूर ने अच्छे अखलाक और इबादत सिखा के अकेला अकेला नहीं छोड़ दिया, बल्कि सबसे जोड़ा जाता है, जोड़ के इमारत बनाया। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, आयत है पाकसमो भी हकीला दुनिया, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ो और अलग अलग मत हो जाओ। उसका तीसरा पॉइंट ये है कि नमाज रोजा जकात हज और इबादत माशर सब में मिलजुल के करने का हुक्म है, अलग करने का इस्लाम के अंदर हुक्म नहीं है। और पांचवा क्या है, पांचवा छठा सातवा हदीस है। पांचवी हदीस क्या है कि जमात को मजबूती से थामो, भेड़िया दूर निकलने वाले बकरी को खा जाता है। उसका छठी हदीस क्या है, जमात तुम पर लाजिम है इसलिए अकेले आदमी पर शैतान लगा रहता है। और तीसरी हदीस है तीन मुसाफिर हो तो एक को अमीर बना ले। और उसके बाद आखिर में ईसाई दिनों से एक का जुमला है, तीन हो तो परेशान नहीं करता। चलिए अब आप बोला दोहराएंगे अभी याद हो जाएगा। इज्तिमाइयत के सिलसिले में वो आठ पॉइंट है, आठ या सात। तो पहला पॉइंट ये है कि हुजूर ने नमाज और इबादत और अखलाक सिखा के अकेले अकेला नहीं छोड़ा, ईद को जोड़ने की तरह उम्मत बनाई। उसके बाद वापस हो गया अल्लाह की जमीन। और उसके बाद पूरे तालीमात के अंदर इस्तेमाल किए। और उसके बाद नंबर चार जब भी कुछ लोग कलमा पढ़ते थे हुजूर को अमीर या अली बना देते थे। और उसके बाद पांचवा क्या है, पांच से हदीस शुरू है क्या, पांच से हदीस शुरू है कि जमात को थामे रहो जिससे कि दूर निकल जाने वाली बकरी को भेड़िया खा जाता है। उसके बाद जमात को लाजिम रखो इसलिए शैतान साथ रह जाता है अकेले में। उसके बाद तीन आदमी भी अगर है तो एक कॉमेट बना ले अबू दाऊद। उसका सही भी मुझे भी कमला है कि जब तीन मुतल हो जाए तो शैतान फट कर लेता। आठ पॉइंट आलवा दोहरा कर लो अकेले चलिए बस काफी कितना हुआ हो गया। अब क्या है, हुजूर ने क्या किया, पहला सबसे पहले लीडर का पॉइंट क्या है कि उम्मत गैर मामूली खतरात के अंदर गिरी हुई है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। उसके बाद ऐसे ही हालात का मुकाबला हुजूर ने इतिहास कायम करके पैदा फरमाया। उसके बाद का पॉइंट क्या है, पहले मोमिन की और कलमे की हिम्मत हुजूर ने दिल में उठा ली। फिर उसके बाद क्या है, नीचे से ऊपर तक इज्तिमाइयत सिखाई। उसका पांचवा पॉइंट क्या है, इज्तिमाइयत से आगे बढ़कर इज्तिमाइयत का तो जाहिर आप अमीर सुनना हो बोलते जाहिर इतना हो, अब दिलों को भी जोड़ने का हुजूर का मतलब भाई भाई। अब उसकी तफसील में क्या पॉइंट है, भाई भाई इज्तिमाई नंद के साथ अंदरूनी कैफियत में भी आपने सबको एक जान बना दिया, सबको मिक्स कर दिया अंदरूनी कैफियत। उसके आपके हुक्म में क्या दूसरा पॉइंट, सुबह खत्म कर दिए, तू अंसारी मैं मुहाजिर, तू फला गिरोह का मैं फला गिरोह का, तू फला खानदान का मैं, ये सब तासुबात बोले तारुफ के तौर पर दरअसल था, मतलब उसके बयान पे तासुब नहीं करते। एक आदमी मैं नदवी होकर लिख लेते नदवा के बारे में, और एक आसमी होकर लिख लेते दानुदेव के बारे में, और एक मदारी होकर लिख लेते वो मदारी। ये तारुफ के वास्ते है तो ठीक है, मतलब रलने के वास्ते तो तेरा गुणगा मेरा गुणगा बोल दो, तो वो तो ऐसे तासुब आपको खत्म कर दिए। बोलो अंसारी है मान है, मतलब उसके बुनियाद पर तासुब नहीं, अपने लोगों का सपोर्ट सामने वाले को मुकाबले मत नहीं। तो नंबर एक क्या है, इज्तिमाई नज़्म के वास्ते अंदरूनी इज्तिमाई नज़्म के साथ अंदरूनी तौर पर भी दिल की कैफियत एक बनाने के लिए भाई भाई बना दिए। और नंबर दो ये है कि तासुब आप खत्म कर दिए, उसमें एक आयत याद करना वस्कुरु नेमतुल्लाहि अलैकुम इसकुन तुम आदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिहि इख्वाना। इस नेमत को अल्लाह भी तस्कार करेगा, अल्लाह की नेमत तुम्हारे ऊपर जो हुई है मुसलमानों याद रखो, इस कुन तुम आदान हुजूर के आने से पहले मदीना आने से पहले तुम लोग दुश्मन से लड़ लेते थे, जंगे होती थी, फअल्लफ बैन कुलूबिकुम तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, फअस्बहतुम बिनिअमतिहि और अल्लाह की नेमत से तुम हो गए इख्वाना भाई भाई हो। भाई भाई बना दिए, आयत याद करना है दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में हदीस याद करना है कि हुजूर क्या फरमाए कि सारे मोमिनों की मिसाल एक जिस्म जैसी है, हुकूमत के लिए हदीस याद रखना है, मसल मुमिनीना फी कवादिहिम वा तराहुमिहिम वा तआदुहुम कमसल जसद वाहिद इज़ इश्तक़ा लहु अज़्ज़ु तदा'अ लहु सालिम जसद सालिम। पर पीछे हदीस है उस किताब में, कोई किताब में है बाद में आप ये किताब सब खरीद लेके ये याद करना, असल इसको अगर पीना है तो ये पूरा पढ़ देना, तो खाली शोर खुलासा। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है, हदीस है ये एक बदन कितना मुतरिक हो जाओ तो। अब उसके बाद कुछ मिसालें हैं, उसके बाद तीन सहाबा प्यासे शहीद हो गए, जान दे दी मतलब पानी दे के मिसाल, इतनी उकूमत आ गई थी अभी कुर्बानी की मिसाल है वो से आ गई, जिसमें उकूमत और कुर्बानी को सब मिला दिए इंसान के गैस के अंदर। तो एक जंग के अंदर जब पानी पिलाने के लिए गए शाम के वक्त में जंग खत्म होने के बाद, तो एक सहाबी जिनकी जान निकल गई थी उनके मुंह से पानी का प्याला लगाया गया, उतने में करीब से आवाज आई पानी, तो वो तो जख्मी कई लोग थे, तो उन्होंने आंखों से पूछा भैया मैं नहीं देखा, जब तक मेरा भाई नहीं पिएगा मैं, अब जान जा रही है अगर पानी पीने के लिए दौड़ के उनके पास गए, उनके मुंह से पानी लगाया गया, उसी वक्त और एक जगह से आवाज आई पानी, तो उन्होंने भी पीने से इनकार कर दिया मैं नहीं पीऊंगा मेरे भाई को पहले पिलाई। अब दौड़ के उनके पास तीसरे के पास गए, वहां जाने जाने तक उनका इंतजार है, फिर दौड़ के दूसरे वाले के पास वापस आए तो उनकी जान जा चुकी थी, फिर दौड़ के पहले वाले के पास आए तो उनकी जान जा चुकी थी। इतना आखिरी वक्त था जान निकल रही थी, मतलब तीनों भी पानी तीनों का हिस्सा नहीं था, पूरे साहब ऐसे थे, तो तीन के साथ तो तलवा हुआ, वरना सबका दिमाग ऐसे था मैं नहीं पीऊंगा मेरे साथी को पहले पिला। चौथे में साहबा की मिसाल याद करना है, पांचवा और छठा छोड़ दीजिए, पांचवा नंबर छठा नंबर जिस जो है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो है सातवा को पांचवा बना दीजिए, अंसारी और मुहाजिर सगे भाई बन गए। हुजूर ने क्या किया, मदीने के बाहर से जो आने वाले हैं उनमें से एक आदमी को लेकर मदीने की आबादी के एक आदमी को लेकर दोनों भाई भाई बना दिए, जोड़िया बना दी, तुम दोनों भाई तुम दोनों भाई तुम दोनों भाई। तो हुजूर के भाई बनाने के बाद उन लोगों ने इस तरह इस रिश्ते को निभाया कि अब सगे भाई जैसा अपने भाइयों को रखते उससे ज्यादा वो दीनी भाई को उन्होंने भाई बना दिया। यहाँ तक सहाबी हुजूर ने जिनको उनका भाई बनाया था अब्दुल रहमान बिन औफ को साथ लेके गए अपने घर, और पूरे घर का जितना सामान था सब तकसीम कर दिए, दो पलंग है तो इधर एक पलंग उधर एक पलंग, कोई भी चीज दो है तो इधर एक उधर, पूरे घर का माल दो ढेर बना दिया, और बना के कहा हुजूर ने आपको मेरा भाई कहा है इसलिए आप आधा आपका है आधा मेरा, दो ढेर में से जो पसंद है आपके लोग। और फिर उनकी दो बीवियां थी तो उनको बीवियों को ला के खड़ा कर दिया सामने, एक मेरी दो बीवियां हैं आपको जो बीवी पसंद आए मैं उनको तलाक देता हूँ अलग कर देता हूँ आप शादी कर लीजिए, इतनी बड़ी कुर्बानी। तो अब्दुल रहमान बिन औफ भी ईमान वाले से पहले बोले थे, बोले आपकी बीवी आपको मुबारक और आपका सामान आपको मुबारक, मुझे मार्केट का रास्ता बताओ, मैं बिजनेस में बहुत माहिर हूँ, मैं जाके मार्केट में बैठ के थोड़े दिन में करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। ये नहीं पेश करने वाले थे, थोड़ा पेश कर दिया तो वो आपके अंदर विचार ये अंसारी और मुहाजिर सगे भाई की तरह भाई बन गए, बीवी को तलाक देने पर आमादा हो गए। ये पांच और छह नंबर हो गया। और एक बात क्या है, हुकूमत का अबू तला अंसारी का हुकूमत का उनके हिस्सा का अबू तला अंसारी एक मरतबा हुजूर के पास एक मुहाजिर आए साहब आए, तो हुजूर ने फरमाया कौन इनको घर ले जाएगा, तो अबू तला अंसारी वो उनको लेके अपने घर के रात में सुनाने खिलाने के लिए घर ले जाने के बाद चुपके से अलग से बीवी से पूछा, हुजूर की तरफ से मेहमान आया लेके आया हूं मैं, कुछ खाने के वास्ते है क्या घर में, दे दो मेहमान को। बीवी ने कहा कि आपके मेरे खाने के वास्ते नहीं है घर में, थोड़ा सा है वो बच्चों की काम है, बच्चों की है बच्चा है आपके मेरे वास्ते तो आपके खाने की कुछ है। तो साहबी बोले बच्चों को तुम पहला के फुसला के कुछ करके सुला दो, उसके बाद हम तीनों हम दोनों भी मेहमान के साथ दस्तरखान पे बैठेंगे, उस वक्त तक औरतों के पर्दे का हुक्म नहीं आया, तो हम लोग भी मेहमान के साथ दस्तरखान पे बैठेंगे, जितना खाना है तुम रख दो, जितना खाना है तुम रख दो, उसके बाद जब तीनों खाने लगेंगे हम बैठेंगे, तुम शराब को ठीक करने के बहाने इधर उधर शराब बुला दो, अब अंधेरा हो जाएगा, अपन दोनों खाली मुंह चलाएंगे खाली आवाज करेंगे ऐसे जैसे हम भी खा रहे हैं, नहीं खाएंगे हम लोग, क्योंकि एक ही आदमी का खाना है थोड़ा खाना है, हम खाएंगे तो उसका पेट ना भरे, हम दोनों खाली खाने की एक्टिंग करेंगे तो तुझे थोड़ा वो एक आदमी खाके पेट भर जाए, बच्चे भी भूखे रह गए या मैं भी भूखे रह गए, लेकिन हुजूर जिसको भाई बनाए मेहमान बनाए उसको सुबह में जब हुजूर की खिदमत में पहुंचे तो अल्लाह ताला हुजूर को बता देते हुजूर को सब देते रात में तुम मेहमान के साथ जो मेहमान नवाजी किए वो बहुत मुबारक अल्लाह बहुत पसंद आए। कुरान में इसकी आयत उतरी यूसुनून अला मन उतरी और लोग कहा मेरी फसादा ये ऐसे अल्लाह के बंदे हैं अपने ऊपर अपने भाइयों को तरजीह देते हैं अगर क्यों पसंदी जरूरत है खुद भूखे रह रहे हैं अल्लाह ने तालीम को आयत ना दिया तो ऐसा हुजूर ने इतिहास सिखाया। तो ये कितने पॉइंट हो गया उसके बाद इब्ने अब्बास की रिवायत के लिए आपका सातवां पॉइंट हो जाएगा क्या है, ये भी बहुत मौसिल है जो सहाबा का मिजाज बनाए कि एक किसी मुसलमान के काम आने का सवाब कितना है। तो एक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हुजूर एक मुसलमान के चचाजात भाई वो एतकाफ बैठे थे मस्जिद नबी में एतकाफ बैठे तो आपको मालूम है वहाँ एक दिन का एतकाफ 50,000 दिन के एतकाफ का सवाब है, एक नमाज पढ़ेंगे तो 50,000 नमाज का सवाब है। तो मस्जिद नबी में एतकाफ बैठे थे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु देखे एक आदमी आके करीब में बैठा इनको उसके चेहरे से मालूम हुआ कि कुछ परेशान है, वो आदमी बोला नहीं ये खुद से उससे पूछे क्या भाई आप परेशान लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जरा मैं एक दोस्त के सिलसिले में जिम्मेदारी लिया था वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ उसकी जरा परेशानी है, तो बोले मैं कुछ काम आ सकता हूँ करना, बोले कि हाँ आपकी सिफारिश से काम हो सकता है, तो काम आ सकता हूँ बोलते जो है बोले क्योंकि अब चप्पल पहनने के वास्ते जा रहे हैं तो याद दिलाए कि आप एहतिकाफ में हैं अगर आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो एहतिकाफ फूट जाएगा, फिर ये याद दिलाया उन्होंने। ये सुनते ही हजरत इब्ने अब्बास के हाथों में आंसू आ गए, रोते हुए हुजूर पाक की खबर की तरफ इशारा करके बोले कि ये जो खबर वाले हैं अभी इनको दुनिया से गए हुए ज्यादा नहीं गुजरे हैं, इन्होंने हमको क्या तालीम दी है आपको मालूम, इस नबी ने हमको तालीम ये दी है कि अगर किसी मुसलमान का कुछ काम कर दो तो ये 10 साल एहतिकाफ से बढ़कर 10 साल एहतिकाफ करने से बढ़कर किसी मुसलमान का काम करना है, इसलिए मैं जानबूझ के सुन रहा हूँ कैसे जोड़ दिया आपस में, ये मोमिन का कोई काम कर रहे हैं तो दस्ता है किताब से अंदर, इतना बड़ा सवाल ये हदीस भी अपने को सुनाना है। तो यहाँ तक की जो बात है वो हुकूमत और अमगुसारी की तालीमात और वाकयात के बारे में ये पॉइंट्स आप लोग जो है याद करके सुनाना है यहाँ तक। नाश्ते के बाद, अभी नाश्ते का वक्त हो गया है, इंतजार में नाश्ता, आप अगर नाश्ता कर लीजिए उसके बाद वो ऊपर से लेके यहाँ तक के, ऊपर से यहाँ तक पांच पॉइंट हो रहे हैं और ये पांच पॉइंट के अंदर सात बातें और चौथे पॉइंट के अंदर उसमें भी आप आठ बातें याद कर चुके हैं। बिल्कुल पॉइंट्स आप जो है नमाज इसके बाद नाश्ते के बाद आप उसे अपनी जोड़ी को सुनाना है, सुना के दस्तखत करना है, ठीक है। سبحان الله والحمد لله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك